ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों क्रोएशिया, कनाडा और साइप्रस की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम चरण में क्रोएशिया में श्री मोदी ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेंकोविच के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। इसमें वैश्विक शांति, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया गया। प्रधानमंत्री ने संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करते हुए कहा कि यूरोप हो या एशिया, युद्ध से समाधान नहीं मिल सकता है। उन्होंने आतंकवाद की निंदा की।
हम सहमत हैं कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली शक्तियों का विरोधी है। 22 अप्रैल को भारत में हुए आतंकी हमले पर संवेदनाओं के लिए हम प्रधानमंत्री जी और क्रोएशिया सरकार के हार्दिक आभारी हैं। ऐसे कठिन समय में हमारे मित्र देशों का साथ हमारे लिए बहुत मूल्यवान था।
श्री मोदी ने बताया कि कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने का फैसला किया गया।
हमने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और विश्वसनीय सप्लाई चेन तैयार करने के लिए कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। हम फार्मा, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसे कई महत्वपूर्ण विषयों में सहयोग को बढ़ावा देंगे।
प्रधानमंत्री ने जहाज निर्माण, साइबर सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर बल दिया। श्री मोदी ने कहा कि संयुक्त प्रशिक्षण, सैन्य अभ्यास और उद्योग स्तरीय साझेदारी के लिए दीर्घावधि रक्षा सहयोग योजना बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने क्रोएशिया में योग की बढ़ती लोकप्रियता की भी सराहना की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाएगा। ईरान से निकाले गए 110 भारतीय विद्यार्थियों को लेकर एक विशेष विमान आज तड़के नई दिल्ली पहुंचा। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर विद्यार्थियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान और इसराइल के बीच संघर्ष के बाद भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। ईरान से लौटे विद्यार्थियों ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में सरकार का आभार व्यक्त किया।
मेरा नाम तमीर इस्लाम है, मैं जम्मू एंड कश्मीर से है और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत शुक्रगुजार हैं, पर्टिकुलरली फॉरेन मिनिस्टर अफेयर्स के, उन्हें बहुत अली खदमत हमारी की और हमें यहाँ तक फास्ट ट्रैक बेसिस पे लाया है।
मेरा नाम मरियम रोज है, मैं दिल्ली से हूँ। इंडियन एम्बेसी ने बहुत स्मूथली हमें निकाला वहाँ से, हम बहुत थैंकफुल है उनके, इंडियन गवर्नमेंट के, इंडियन एम्बेसी के, उन्होंने हमें निकाला।
ईरान में भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे तेहरान में भारतीय दूतावास के आपातकालीन हेल्पलाइन और नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय द्वारा स्थापित 24 घंटे के नियंत्रण कक्ष के माध्यम से संपर्क में रहें। इस बीच इसराइल और ईरान का संघर्ष तेज हो गया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के किसी भी हस्तक्षेप से पूरे पश्चिम एशिया में पूर्ण युद्ध भड़क उठेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्षेत्र में सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। उन्होंने ईरान के बिना शर्त समर्पण की भी मांग की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कल न्यूयॉर्क में ईरान के बारे में एक आपातकालीन सत्र आयोजित करेगी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने कल कई प्रमुख बाजार सुधारों को मंजूरी दी। सेबी ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पीएसयू की स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए नए ढांचे को मंजूरी दी है। अगर शेयरधारक मंजूरी देते हैं तो पीएसयू को अब शेयर बाजार से आसानी से हटाया जा सकता है। अधिक से अधिक दीर्घकालिक विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए सेबी ने उन विदेशी निवेशकों के लिए नियमों को भी सरल बनाया है जो विशेष रूप से सरकारी बॉन्ड में निवेश करते हैं। चार राज्यों में 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। गुजरात में 2, केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब में 1-1 विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव कराए जा रहे हैं। मतों की गिनती सोमवार को होगी। झारखंड में आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने गुजरात, केरल, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।